आदरणीय राजू भाई जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। भाई जी का बचपन से ही योगी जीवन जीने का लक्ष्य था और ये लक्ष्य आपके व्यक्तित्व से झलकता है। आप बचपन में ही बहुत अर्ली एज में 1960 में सपरिवार विद्यालय के संपर्क में आए और 1972 से ही बेहद महायज्ञ मधुबन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी त्याग तपस्या सेवामय और समर्पण भाव को देखते हुए यज्ञ के परम श्रद्धेय बड़े दादी और दीदी जी ने आपको 1976 में मुरली डिपार्टमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और तब से हम सबकी मधुर मुरली हमारी खुराक हम ब्राह्मणों तक पहुंचाने का कार्य आप बखूबी निभा रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख मुरली श्रवण करते समय साथ साथ उसको टाइप कर शीघ्र अति शीघ्र पूरे विश्व में हम सब तक पहुंचाने की सेवा भी आप करते रहे हैं। आप दादियों वरिष्ठ दीदियों और ब्राह्मण परिवार के बीच एक ब्रिज का कार्य करते हैं। बड़ी दादियों दीदियों की डायरेक्शन को शब्दों का रूप देकर हम तक पहुंचाते हैं। प्रति माह मुख्यालय से प्रकाशित होने वाला पत्र पुष्प के भी आप निमित्त हैं। आपको स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, जिस दिव्य बुद्धि को आप यूज करके ईश्वरीय महावाक्यों का मनन चिंतन कर पीस ऑफ माइंड टीवी पर प्रसारित होने वाले अमूल्य रतन कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों दिलों में ज्ञान की रोशनी जगा रहे हैं। आप कृषि और ग्राम विकास प्रभाग के वाइस चेयरपर्सन हैं। पांडव भवन ज्ञान सरोवर शांतिवन तीनों ही स्थानों पर फोटोकॉपी और स्टेशनरी डिपार्टमेंट संभालने के निमित्त भी प्यारे बाबा ने आपको बनाया है। शाश्वत योगिक खेती योजना ग्राम दत्तक योजना जैसी सेवाओं के आप कर्णधार हैं और ऐसी ही सेवाओं के कई नेशनल लेवल के सफल अभियानों का आप कुशल संचालन कर रहे हैं। आपके द्वारा लिखित ज्ञान सरिता ज्ञान सुमन ज्ञान वीना ज्ञान के अनमोल मोती जैसी पुस्तकें अध्यात्म पथ पर चलने वालों के लिए मार्गदर्शिका है और भारत के साथ साथ आपने पांचों ही महाद्वीपों में बाबा के ज्ञान की अलख जगाई है। आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे। खुशबू बनकर महकना आपकी फितरत है। सेवा में खुद को ढालना आपकी इबादत है। दादियों के आशीषों का सिर पर हाथ निराला है। आपके पावन चिंतन ने जग में किया उजाला है। जिनके रोम रोम में बसता ईश्वरीय ज्ञान है, आदरणीय राजू भाई जी आप इस यज्ञ की शान है, आप इस यज्ञ की शान है। तो अभी हमारा मार्गदर्शन करेंगे बिंदु का महत्व आदरणीय राजयोगी राजू भाई जी।
ओम शांति। सारी पढ़ाई का सार पॉइंट बन जाना, पॉइंट लगा देना। मीठे बाबा ने हम सबको आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, प्रकाश का एक चमकता हुआ सितारा है, ये पहला पाठ पढ़ाया। हम सब ने स्वयं को पहचाना, मैं कौन हूँ उसकी स्मृति आई, फिर मेरा कौन है उसके साथ मेरा संबंध क्या है, तो ये दो शब्दों में जैसे मैं आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ ऐसे मेरा बाबा भी ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन रूप में ज्योतिर्बिंदु है, गुणों में सिंधु है, सागर है। अगर बाबा को हमने यथार्थ पहचान लिया तो संपूर्णता सहज आ जाएगी। इसलिए बाबा ने इस बिंदु का बहुत बड़ा महत्व तो बताया है। जैसे इस शरीर के अंदर अगर कहते हैं नूर है तो जहान है, नूर क्या है, आँखों के बीच में जो बिंदु है जिससे हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, नूर नहीं तो जहान नहीं। और बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेरे नैनों के नूर हैं। कौन है, हम सभी हैं नैनों के नूर, क्योंकि ये शरीर तो नैनों में नहीं समा सकता, आत्मा को बाबा ने अपने नैनों में समाया है। जैसे कोई माँ बाप के बहुत प्यारे बच्चे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं तो मेरे नैनों का तारा है, नैनों में समाया हुआ है। कोई कहते हैं मेरे दिल में समाया हुआ है। तो हम सब बाबा के बच्चे जितना बिंदु स्वरूप स्थिति में रहते हैं उतना देह अभिमान सहज समाप्त होता जाता है, सभी विकारों पर विजय प्राप्त करने की बड़ी सहज विधि बाबा ने हम सबको सिखा दी। बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस भ्रकुटी आसन पर बैठकर स्वराज्य अधिकारी बनकर अपनी कर्म इंद्रियों पर शासन करना सीख लो। सीख लिया ना सबने, बाबा ने सबको सिखा दिया। पहला शासन अपने मन बुद्धि संस्कारों पर, दूसरा शासन इन शरीर की सभी कर्म इंद्रियों पर, ज्ञान इंद्रियों पर। जितना हम अपने बिंदु स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा बिंदु इस शरीर में एक चमकते हुए सितारे के रूप में भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ, ये मेरा अकाल तख्त है। सब अकाल तख्त पर बैठे हो ना, अभी सब अकाल तख्त पर बैठ करके बिंदु के महत्व को समझना, क्योंकि जब इस अकाल तख्त की विस्मृति हुई, आत्मा जब देह अभिमान में आई तब इन विकारों की उत्पत्ति हुई, और विकारों की उत्पत्ति होते ही अनेकानेक शाखाएं निकल गई। जब परमधाम घर से वो बिंदु उतरी, इस आकार सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आई, तो बहुत छोटी छोटी शाखाएं थी। सबसे पहले देह की शाखा मिली, फिर संबंध मिले, फिर कुछ न कुछ पदार्थ मिले, शाखाएं बढ़ती गई, और द्वापर आते आते ये वृक्ष बहुत बड़ा विस्तार हो गया। कितना बड़ा विस्तार है वृक्ष का, एक अपने ही वंशावली को अपनी बिरादरी पर नजर डाल करके देखो, 84 जन्मों में कितना बड़ा परिवार, कितनी रचना, कितने साधन, कितने संबंध, कितना बड़ा विस्तार किया, किसने किया? बिंदु ने। और उस बिंदु के विस्तार से आज ये वृक्ष अनेक शाखाओं उप शाखाओं में फैल गया और आत्मा इन सब के बंधनों में बंधती गई। सबसे बड़ी शाखा देह की, कर्मेंद्रियों की, संबंधों की, पदार्थों की, साधन सुविधाओं की, अनेक शाखाएं उप शाखाएं टाल टालियां, बहुत बड़ा विस्तार हो गया। बिंदु से ही निकला, बीज से ही पूरा वृक्ष बन गया। अभी संगम युग पर बाबा कहते हैं, बच्चे इस विस्तार को समेट लो, बहुत विस्तार किया है। और अगर बुद्धि बहुत विस्तार में फंसी हुई है तो इस शरीर से एक सेकेंड में न्यारी नहीं बन सकती, डिटैच नहीं हो सकती। जो हम सब योग अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, एक ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, संकल्पों की गति भी सीमित हो जाए और इस शरीर पर आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण हो जाए, उसके लिए बिंदु रूप स्टेज के लिए हम सब बहुत अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं योग की जो शक्तिशाली स्टेज है, पावरफुल स्टेज है, वो है बिंदु रूप की स्टेज, एकाकारी स्टेज, एक साकारी स्टेज और एक निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज में मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, और उस बिंदु का बिंदु से संबंध जुटता है तो उसकी शक्तियां ट्रांसफर होती हैं। बाबा ज्योति बिंदु है लेकिन उसमें ज्ञान गुण शक्तियां सागर की तरह समाई हुई हैं। इसलिए जब हम योग अभ्यास करते हैं तो अपने बिंदु स्वरूप में स्थित होते हैं और उस स्वरूप में स्थित होते ही जब इस देह भान को हम छोड़ते हैं, इसकी विस्मृति होती है और एक की निरंतर स्मृति रहती है, तो उस बिंदु से ही बिंदु में वो सर्व शक्तियां ट्रांसफर होने लगती हैं। इसलिए संगम युग पर इस समय हर एक को बिंदु स्वरूप में रहने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है और उसके लिए ध्यान रखना है, जहां जहां भी हमारी बुद्धि का विस्तार है, जिधर जिधर बुद्धि जाती है भटकती है, वही बंधन है। और उन बंधनों की रस्सियों को जब हम काटेंगे तब एक सेकेंड में इस शरीर से न्यारे बनकर बाबा के प्यार में समाने का अनुभव होगा। जब तक विस्तार को समेटा नहीं है, बहुत विस्तार किया, बाबा एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं, जैसे मकड़ी जाला बुनती है, बड़ी समझदार कारीगर है, अपनी लार से एक बहुत सुंदर जाला बनाती है और कई बार उसी जाले के अंदर घूमते घूमते उसमें फंस जाती है और प्राण त्याग देती, फंस जाती है। लेकिन कई समझदार होती हैं, जाला बुन दिया, बन गया, फिर एक कोने में बैठ करके उस जाले को धीरे धीरे फिर से अंदर ले लेती, समा लेती हैं। तो बाबा भी कहते हैं तुम आत्माओं ने बहुत बड़ा जाल बुन दिया, बहुत सुंदर बुना, मेरे का जाल बहुत बड़ा बना लिया, और अगर इसको समेट नहीं पाए तो इसमें फंस जाएंगे। इसलिए सब दुखों का कारण ये विस्तारवाद है। जितना विस्तार में बुद्धि गई, मेरे का ही बहुत बड़ा विस्तार है, और उस मेरे को जिस दिन मैंने कहा ये सब तेरा है, उस दिन वो सारा विस्तार का जो जाल है वो समा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाबा के अंदर जब हम बाबा शब्द कहते हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप में बाबा को याद करते हैं, तो एक बाबा में ही सर्व संबंधों की रसना समाई हुई है। सर्व संबंध और सब साधन सुविधाएं, जो कुछ हमें चाहिए संसार में, एक व्यक्ति और दूसरा वस्तुएं, दो ही चीजें हैं। ऐसे ही बाबा जब हमारा संसार बन जाता है, उस बिंदु स्वरूप बाबा को हम यथार्थ पहचान करके उनको अपना संसार बना लेते हैं, तो एक बाबा में ही मेरे सब संबंध हैं। माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन बच्चा, जो संबंध हमें चाहिए उस सब संबंध से हम बाबा को याद करके, और सब संबंध जो बनाए हैं बंधन, उन बंधनों से हम मुक्त होते जाते हैं। वास्तव में संबंध शब्द ही सुख का शब्द है। देवताएं भी संबंध के बिना तो पाठ बजा नहीं सकते। अब श्री कृष्ण ने जन्म लिया, माता पिता के साथ संबंध हुआ, भाई बहने परिवार बने, संबंध तो सतयुग त्रेता में भी थे, देवताओं के भी थे, द्वापर और कलयुग में भी संबंध हैं, लेकिन दोनों में अंतर इतना बड़ा हो गया। वो संबंध शब्द सुख देने के लिए थे, सुख देना, सहयोगी बनना, एक दूसरे को समय पर साथ देना, इसके लिए संबंध थे। लेकिन जब देहाभिमान में आत्मा आई, संबंधों का और विस्तार हुआ, तो संबंधों में बंधन शुरू हो गए। स्वार्थ के कारण, ईर्ष्या के कारण, वैर भाव के कारण, कई प्रकार के बंधनों में आत्मा बनती गई। इसलिए जहां बंधन है वहां दुख है। बाबा ने अपने संबंध में लाकर के हम सब बच्चों को एक बहुत सुंदर विधि बताई। अगर तुम अपने बंधनों को काटना चाहते हो तो ये नहीं कहो ये मेरा बंधन, ये बंधन, ये बंधन, ये बंधन, वर्णन नहीं करो, लेकिन बहुत गुप्त रीति से अपने सब संबंध एक बाबा से जोड़ लो। जितना बाबा से संबंध जुटते जाएंगे उतना बंधन वाले संबंध कटते जाएंगे, आत्मा बंधेगी नहीं। हम सबको बाबा एक बहुत सुंदर टाइटल देते हैं, आप मेरे बच्चे उड़ता पंछी हो। क्यों डालियों को पकड़ करके रखा है? तोते की कहानी बाबा सुनाते हैं, मुरली के अंदर हम सुनते हैं, कहते हैं कुछ तोते जो बोलने वाले आवाज में आते हैं, वो एक डाल पर बैठे थे, और जो वहां से क्रॉस होता था उसको आवाज लगाते थे, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो कोई राहगीर गए, देखा भाई इसको बांधा किसने है, पकड़ा किसने है, क्यों इतना चिल्ला रहा है? तो देखा कि उसने तो अपने ही पंजे से डाली को जोर से पकड़ा हुआ था, और जोर से पकड़ के फिर चिल्ला रहा था, मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चों ने भी ऐसे अनेक डालियां बना ली हैं और उन डालियों को अपने ही पंजे से मेरे के पंजे से पकड़ के बैठ गए और कहते हैं बाबा मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ मुझे छुड़ाओ। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे छोड़ो तो छूटो, छोड़ो तो छूटो, अगर तुम छोड़ दोगे तो छूट जाओगे, लेकिन जहां मोह है अटैचमेंट है इतनी जल्दी छूटता नहीं है। इसलिए सब ध्यान देना, हमारी बहुत सूक्ष्म रस्सियां, हम कहते हैं कि हमारा किसी में मोह नहीं है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रस्सियां गीता के फर्स्ट अध्याय से लास्ट अध्याय में इतना बड़ा 18 अध्याय का ज्ञान भगवान ने दिया। लास्ट में अर्जुन कहता है अब मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, नष्टो मोहा बन गया, पहले बीच में कितना मोह जागृत हो रहा था, ये मेरे गुरु ये मेरे शिक्षक ये मेरे मामा चाचा काका सब सामने खड़े हैं और भगवान कह रहा इनको मारो, अब कैसे इनको मारूं मैं, कहता मारो नहीं तो सब मरे पड़े हैं, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, तुम जिस मारोगे किसको। लेकिन वो मोह ऐसा था जो उसको तीर चलाने की हिम्मत ही नहीं होती थी, तब भगवान ने कहा ये तो सब मरे हुए हैं किसमें मोह रख रहे हो तुम। लास्ट के अध्याय में आकर आत्मा का वो पाठ पक्का हो गया कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो तो न मरती है न कटती है, तब कहा मैं अभी नष्टो मोहा हो गया, गीता पूरी हो गई। पूरे ज्ञान को बाबा ने जो हम सबके सामने प्रस्तुत किया, इतना बड़ा ज्ञान ज्ञानदाता से हम सबको मिला है। कभी कभी मैं जब स्टडी करता हूँ मुरलियों की तो देखता हूँ कि बाबा ने क्या नहीं बच्चों को सिखाया, चार ही सब्जेक्ट के अंदर इतना सुंदर विस्तार किया, ज्ञान की बातों का स्पष्ट विस्तार। अभी तक जो कुछ सुनते आए बाबा ने कहा बच्चे ये सब भक्ति का ज्ञान सुना, ये सब फिलॉसफी थी, ज्ञान माना समझ, और जब समझदार बनते हैं जब अपने आप की पहचान मिलती है मैं कौन मैं कहाँ से आया हूँ मुझे क्या करना, तो उस पहचान के आधार से पाठ बजाते हैं, शरीर में प्रवेश होते हैं, शरीर का आधार लेते हैं और कर्म करके फिर न्यारे हो जाते हैं, बंधन में नहीं बनते। इसलिए वर्तमान समय बाबा के हर बच्चे को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए छुट्टी दी है बाबा ने, छुट्टी है करो, लेकिन कर्म बंधन न बने उस पर अटेंशन देना, शरीर का आधार लेकर के कर्म करो। डबल करावन हार की स्मृति, एक मेरा बाबा मुझ आत्मा को निमित्त बना करके कार्य करा रहा है, दूसरा मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेकर के इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर रही हूं, ये डबल करावन हार की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। और जब हम फंस जाते हैं यही मेरा काम है यही मेरी सेवाएं हैं, तो जहां मेरा पनाता है उन्हीं सेवाओं का बंधन संस्कारों का बंधन, फिर संबंधों में आते हैं कहीं लगाओ कहीं टकराओ कहीं झुकाओ कहीं प्रभाव, अनेक प्रकार के बंधनों में इस समय आत्माएं बंध चुकी हैं। अगर इन सब बंधनों को काटना है तो क्या करेंगे, मैं आत्मा बिंदी हूं बन जा, अपने महत्व को समझ लो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बीज में कोई भी विस्तार नहीं होता, लेकिन जब बीज धरनी पर पड़ता है मिट्टी और पानी का उसको सहयोग मिलता है जलवायु मिलती है तब उसमें से अंकुर निकलता है, और वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा विस्तार हो जाता है, झाड़ बन जाता है, फल देता, छाया देता। लेकिन बाद में जब वो वृद्ध होता है, जड़ीभूत जिसको बाबा कहते हैं, तब फिर उसमें वही बीज आ जाते हैं और वृक्ष खत्म होता है, उसी बीज को संभाल करके रख लेते। तो ये पूरे कल्प में सतयुग से आत्मा पाठ बजाते बजाते इस पूरे चक्र में आई और खेल खेलते खेलते बहुत बड़े विस्तार में फंस गई और अनेक उलझनों में उलझ गई। इसलिए अंतिम समय में बाबा कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, इसी में सबको मेहनत लगती है। साकारी स्वरूप तो है नहीं, निराकार स्वरूप में स्थित हो करके निराकार बाबा को याद करना, के लिए मेहनत लगती है। क्योंकि बहुत समय से देहधारियों को हम सब ने याद किया है, उनको ही भगवान माना, उनको ही अपना पूज्य माना, उनको ही सामने रखा। अब बाबा अंत समय में कहते हैं, बच्चे इन सबको, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, माँ में कम शरण ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। कौन शरण में आएगा? आत्मा शरण में आएगा। तो जब हम अपने बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, तो जितना विस्तार है सब कुछ सेकंड में समा जाता है। दो शक्तियां हैं विस्तार को समाने की, एक समाने की शक्ति और दूसरा समेटने की शक्ति। जब कहीं जाना होता है तो बिखरे हुए सामान को समेटना पड़ता है। अब हम सब का वापस चलने का समय है। बाबा कहता, बच्चे बुलावा होगा, तैयार हो? अचानक के बुलावे में तैयार हो? जिसने समेटा हुआ है, समाया हुआ है, वो तो कहता हाँ बाबा मैं एवर रेडी हूं। लेकिन जिसने बहुत विस्तार में बुद्धि फंसाई हुई है, उनको समेटने में बहुत मेहनत है। फिर कैसी होगी अंतमति सोगति? अंत समय में बाबा की स्मृति बनी रहे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, अंत काल जो प्रभु सिमरे उनकी स्मृति रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं उसी समय हमको बाबा याद आ जाएगा। जैसे कहानी सुनाते हैं ना, एक व्यक्ति बड़े समझदार थे, उन्होंने सोचा कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही मुक्ति दिला देता है, तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रख लिए कि बच्चे ही अंत में याद आते हैं। तो एक ने अपने बच्चे का नाम रख लिया राम, एक का नाम रख लिया कृष्ण, एक का नाम रख लिया मोहन। तीन बच्चे हुए और तीनों का नाम अपने इष्ट के रूप में उनको रख लिया, याद करता रहता था। जब अंत समय में बिस्तर पर था, प्राण निकलने वाले थे, तो उसने याद करना शुरू किया, राम कहाँ है? खड़ा हो गया, सब आ गए सामने, राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, मोहन भी आ गया कि बाबूजी जा रहे हैं। तो जब विदाई का समय देखा, ये तीनों सामने खड़े हैं, तो अचानक उसको याद आया जब तीनों यहां हैं, तो चिल्ला के बोलता है, दुकान पर कौन है? और ज्यों बोला दुकान पर कौन है, प्राण तन से निकल गए। तीनों सामने हैं, फिर भी जहां बहुत काल तक ध्यान था, टेंशन था, तो भगवान भी सामने होते भी अंतमति सोगति कहां हुई? उसी साधनों में बुद्धि फंस गई, भटक गई। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे ऐसे नहीं अंत में शिव बाबा मुझे याद आ जाएगा, बहुत काल से सर्व संबंधों के रसना वाली याद चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं मेरे बाबा से सर्व संबंध हैं, और सबको वास्तव में सब संबंधों की याद रोज में जरूरत नहीं पड़ती। तीन संबंधों से तो बाबा सदा हमारे साथ रहते हैं, पिता के रूप में, मात पिता के रूप में पालना दे रहे हैं, जन्म दिया, इतना दिव्य अलौकिक जन्म और पालना मिल रही है। शिक्षक के रूप में एक एक बच्चे को नॉलेज फुल बना दिया, स्वयं का ज्ञान, घर का ज्ञान, पिता परमात्मा अपना ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, पुनर्जन्म का ज्ञान, मास्टर ज्ञान सागर बनाया शिक्षक के रूप में, और रोज पढ़ा रहा है। एक दिन मेरे से कोई पूछता है, आपको कौन सा संबंध अच्छा लगता है? हमने कहा, जब से आया हूँ तब से मैंने तो बाबा को अपना शिक्षक समझा है, और अभी तक भी वो मुझे पढ़ा रहा है, पढ़ ही रहा हूँ। किसने किसने बाबा को शिक्षक बनाया है? दूसरे सब संबंध तो हैं, सबने बनाया है। इसलिए अगर शिक्षक है तो ध्यान देना, एक बात अंडरलाइन, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। हमारी पढ़ाई अंत तक पूरी नहीं होती, ऐसे नहीं हमने तो सब पढ़ लिया। कई कई बाबा के बच्चे हैं, कहते मुरली तो वही है ना, रिपीट तो हो रही है, कई बार पढ़ लिया है, इसलिए क्या वही वही रोज सुनना। अब गीता पढ़ने वाले रोज रोज वही अध्ययन करते हैं, अध्याय पढ़ते हैं, रामायण पढ़ने वाले ये नहीं कहते तो वही रामायण बार बार पढ़ रहे हैं, कंठाग्र होने के बाद भी, स्मृति में आने के बाद भी उसकी स्टडी रोज करते, पाठ करते हैं। और बाबा के बच्चे कहते हमने सब पढ़ लिया, बाबा कहते हैं स्वरूप बने हो। अभी तक भी कई बाबा के बच्चे सोचता स्वरूप हैं, सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैं बिंदु हूँ, वो भी ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन उस स्वरूप में स्थित नहीं होते। अगर उस स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो शायद बाबा पढ़ाना बंद कर दे। आत्मा कर्मेंद्रिय जीत विजयी बन जाएगी, माया जीत बन जाएगी। इसलिए जब तक हम विक्रमाजीत, माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, कर्मातीत नहीं बने हैं, तब तक बाबा की पढ़ाई चलती रहेगी, पढ़ाता रहेगा। भले रिवाइज कोर्स से हम रिवाइज करते रहेंगे। हमारी जो संपूर्णता की डिग्री है, ध्यान देना, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पढ़ाई की डिग्री जो है वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। इस डिग्री लेने के लिए हम सब रोज स्टडी करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं। एक दिन की भी मुरली मिस होती तो ऐसे लगता है कुछ पता नहीं, भोजन नहीं मिला आज। बुद्धि की खुराक, बुद्धि का भोजन बाबा की मुरली से हमको रोज मिलता है। इसलिए सब इस पर बहुत अंडरलाइन करना, कुछ भी हो जाए बाबा के महावाक्य आज के लिए मेरे लिए कहते हैं ग्रंथ का वचन है। जो आज की समस्याएं हैं, आज के दिन जो मेरे सामने पेपर आने वाले हैं, अभी एक नया प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, जैसे अमूल्य रत्न निकला उसके तो 1400 एपिसोड बन गए, वो तो रिवाइज हो रहे हैं अव्यक्त मुरली के, लेकिन अभी एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, मुरली मैजिक। और वो मुरली मैजिक के अभी हमने 100 के ऊपर एपिसोड रिकॉर्ड कर लिए हैं, साकार बाबा की मुरली के प्रश्न उत्तर हैं, माना उसके ऊपर विस्तार है। तो वो मुरली मैजिक भी 2-3 मास के बाद पीस अप माइंड में आएगा। मैंने देखा कि बाबा ने साकार में जो बच्चों के सामने ज्ञान स्पष्ट किया, भले साकार मुरलियाँ ऐसे लगती हैं कि जैसे जंप है, लेकिन नोट्स लिए गए शब्द बाय शब्द, तो कोई लिखने वाला था नहीं, कंप्यूटर भी नहीं थे, शॉर्ट हैंड भी नहीं थी, बाबा की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो हमारी ईशु दादी, चंद्रहास दादा नोट्स लेते थे और उसी नोट्स के आधार से मुरली बनती। जो बातें रिपीट लगती, जो बातें बार बार बाबा कहते हैं, वो कट कर दी जाती, निकाल दी जाती। अगर एक बार मैंने बाबा की मुरली टाइप करना शुरू किया टेप से, तो 25 मिनट की मुरली को मैंने 8 पेज में टाइप किया, शब्द बाई शब्द। तो मैंने देखा कि उसको मैं मुरली का रूप बनाऊं तो कितना पेज भेजूं, तो सेट किया, 2 मुरलियों से बनाई। लेकिन उस समय तो साधन नहीं थे, अभी तो कंप्यूटर आ गए, स्पीड आ गई टाइप की। तो बाबा ने जो ज्ञान दिया उसका बहुत बड़ा विस्तार है, और वो विस्तार को अगर हम सार में समझने की कोशिश करें तो बस बिंदु लगाओ, बिंदु बनो, बिंदु बाबा को याद करो। एक बहुत सुंदर यादगार महाभारत के अंदर आता है इसका, द्रौपदी स्वयंवर का। कहते हैं जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो एक शर्त रखी गई थी कि जो धनुर्विद्या में नंबर 1 होगा उसके साथ ही द्रौपदी का स्वयंवर होगा, लेकिन उसमें एक बहुत ऊंचाई पर पेड़ में एक मछली टंगी थी और नीचे तेल का कड़ाहा था, मछली घूम रही थी और उस मछली की आंख पर तेल लगाना था, ऊपर देख करके नहीं, तेल में देख करके। अब ये सब निशानियां बताई गई हैं कि जब अर्जुन ने उस मछली की आंख को, उस बिंदु को भेदा, तब द्रौपदी का वरण किया। द्रौपदी माना ध्रुव पद, जो ऊंचे से ऊंचा पद है उस पद की प्राप्ति का मूल आधार। इतनी गहरी एकाग्रता है, जब आत्मा स्वरूप में स्थित होकर के हम आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे सब विकर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा संपूर्ण पावन बन जाती है, और पावन आत्माएं ही ऊंच पद के अधिकारी बनती हैं। बड़े गहरे आध्यात्मिक रहस्य हैं। लेकिन क्या उस आंख पर, उस बिंदु पर हम एकाग्र होते हैं? कितना समय अपने आप को, मन बुद्धि को हम एकाग्र कर सकते हैं? कभी अपने आप से पूछा है? योग में हम बैठते हैं, अलग अलग स्थानों पर भी बैठते हैं, संगठन में भी बैठते हैं, एकाग्रता की शक्ति कितनी है? कितना समय हम अपने मन को अपने स्वरूप पर एकाग्र कर सकते हैं? अगर एकाग्र नहीं होते हैं, ये संकल्प आया, वो संकल्प आया, वैसे एकाग्रता में भी शून्यता नहीं है, जड़ता नहीं है, चैतन्यता है, लेकिन एक अनुभव के संकल्प है। जैसे 3 शब्द मैं आपको बताता हूं, एकाग्रता के अंदर जैसे एकदम डीप साइलेंस में हम चले गए, आत्मा बिल्कुल शीतल शांत, सब बाहरी संकल्पों से अंदर चली गई, कोई हलचल के संकल्प नहीं। सागर में ऊपर हलचल है, लेकिन जो तले में चला गया वहां बिल्कुल शांत है, फिर रतन ले आता है, एक डीप साइलेंस। दूसरी स्वीट साइलेंस, बहुत मीठी, इसमें शांति भी है, प्रेम भी है, सुख भी है, आनंद भी है, ज्ञान सूर्य बाबा के साथ कनेक्शन है, ये ज्ञान सागर। ज्ञान का मनन चिंतन करते करते उस दीप में चले गए, बिंदु रूप में स्थित हो गए, फिर स्वीट साइलेंस में ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों के अनुभव में समा गए, और फिर तीसरी स्टेज बहुत शक्तिशाली, वो डेड साइलेंस, जिसके अंदर और कोई संकल्प नहीं है, साकारी सृष्टि में रह करके हम परमधाम घर का अनुभव करते हैं, इसलिए बहुत सुंदर शांति पवित्रता। जैसे एक कहते हैं भक्ति में कि आत्मा बूंद की तरह सागर में जाके समा गई। अब सागर में समा गई तो अस्तित्व खत्म हो गया। बाबा कहते कोई भी आत्मा समाती नहीं है, लेकिन प्यार में समा जाती है, लव में लीन हो जाती है। तो हम सब जब परमधाम की स्थिति में स्थित होते हैं तो लवलीन स्थिति है, जिसके अंदर और कोई संकल्पों की हलचल नहीं है, बस ज्योति बिंदु स्वरूप में आत्मा स्थित है। तो वर्तमान समय ऐसी अच्छी एकाग्रता का अभ्यास चाहिए और उस एकाग्रता से ही सब इंद्रियां शीतल शांत हो जाती हैं, किए हुए सब विकर्म अपने आप नाश हो जाते हैं, आत्मा बिल्कुल पावन स्वच्छ बन जाती है। और अगर यथार्थ योग है, बिंदु समझ करके बिंदु के साथ कनेक्शन हम जोड़ लेते हैं, तो उसकी निशानियां आत्मा की जितनी मिलावटें हैं, आत्मा में जो मिलावट हुई बॉडी कॉन्शियस के कारण, जो हम सब के अंदर अनेक बुराइयां आई, जिनसे विकर्म हुए, जिनसे आत्मा ही पाप आत्मा बनी, वो आत्मा के पाप नाश होने लगते, आत्मा पावन बन जाती है, स्वच्छ बन जाती, निर्मल बन जाती है। इसलिए सबसे अच्छी निशानी, अगर हमारा योग यथार्थ है और कुछ समय भी हम बिंदु समझ करके बिंदु बाप की याद में रहते हैं, योग की तीनों स्टेजेस का अच्छा अनुभव करते हैं, डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस, डेड साइलेंस, साकारी याद, आकारी याद, निराकारी याद, तो सबसे अच्छी निशानी है जिसका यथार्थ योग है, रियल गोल्ड बन जाती आत्मा, रियल गोल्ड। और रियल गोल्ड की निशानी सहज मोल्ड हो जाती है, कहीं पर भी एडजस्ट कर लेती अपने आप को, टाइट नहीं रहती, बड़े सरल स्वभाव बन जाती है, बहुत नम्रचित बन जाती है, सरलता, नम्रता, मधुरता, दिव्यता, अलौकिकता उसके प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से झलकने लगती है। ये बिंदु स्वरूप की स्थिति की प्रैक्टिकल रिजल्ट है। अगर उस स्वरूप में हम स्थित हैं और आत्मा एकदम उस गहरे योग के अनुभवों में रहती है, तो आप देखेंगे जो आत्मा के अंदर आधा कल्प में मिलावटें हुई, जैसे सोने के अंदर बहुत अलाए, बहुत मुलम्मा मिक्स हो जाए, तो जो 24 कैरेट प्योर सोना तो मिक्स होते होते इस समय क्या कैरेट रहेगी, 9 कैरेट कि 9 कैरेट वैल्यू लेस हो गई। लेकिन जब वो सुनार के हाथ में आती है तो एक तेज आग के अंदर, भट्टी के अंदर उसको पिघला देता है, और पिघलाते ही वो सोना अलग हो जाता है, सोना खत्म नहीं होता, लेकिन उसमें जो मिलावट है वो दूसरे साइड आ जाते है। फिर वो जब प्योर सोना ठंडा होके डल्ली बनती है तो कहते हैं रियल गोल्ड है, इसको मोल्ड किया जा सकता है, कोई भी जेवर उसे बनाया जा सकता है। तो बाबा अपने बच्चों को इस समय जो योग सिखला रहे हैं, आप सब देख ध्यान देना, अगर हमारा योग यथार्थ है, हम कुछ समय भी इस देह से न्यारी बिंदु बन करके बिंदु स्वरूप बाबा की याद में रहते हैं, तो जितनी अलाए मिक्स हुई है देह मान की, बुराइयों की, विकारों की, वो धीरे धीरे निकलती जाएगी, आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएगी, सबके साथ मिल के चल सकती है, सबके साथ व्यवहार में आते हो भी मधुर व्यवहार, सरल व्यवहार, मिलनसार, कभी भी उसके अंदर उत्तेजनाएं नहीं रहती। अगर उत्तेजनाएं, उत्तेजनाओं में दो चीजें हैं, एक आवेश, दूसरा आवेग। आवेश में तो पता नहीं क्या क्या हम भूल जाते हैं, संबंधों का भी लिहाज नहीं रखते, गुस्सा आया तो कटु वचन भी निकल जाते हैं, हाथ पैर भी चल जाते, आवेश। और जब वेग आता है अंदर का, विकारों का, तूफानों का, तो पता नहीं क्या क्या कर्म इंद्रियों से उल्टे कर्म कर लेते, वहां उस समय ज्ञान ध्यान कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं, इसलिए जब आत्मा अपने बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित रहती है तो आवेश और आवेग की उत्तेजनाओं से मुक्त हो जाती है। सभी चेक करना, अपने आप को पूछना, सहज राजयोगी जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में क्या हमने अपनी उत्तेजनाओं पर विजय प्राप्त की है। योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल और सुगंधित हैं, शीतल और सुगंधित हैं, जो निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख मान हानि सब में समान स्थिति में रह सके। बाबा ने अपनी ऐसी स्थिति बना करके बच्चों के आगे रखी। ब्रह्मा बाबा इसका संपूर्ण मूल उदाहरण बन करके रहे। कितने बच्चों ने भी ग्लानी की होगी, कोई भी बाबा को कहे बच्चे तो निर्दोष हैं, बच्चे इनका कोई दोष नहीं है। न बाबा ने कभी दूसरों का दोष बताया, न अपने को दोषी ठहराया, बच्चे तो माया का साम्राज्य है और माया के साम्राज्य में कुछ न कुछ होता ही है, इसलिए मेरे बच्चे सब निर्दोष हैं। ऐसी निर्दोष भावना जागृत की, इसलिए किसी से भी वैर भाव नहीं, किसी से भी ईर्ष्या द्वेष नहीं, सब मेरे बच्चे हैं, सबको सत्कार दे। अरे बच्चे जो आज गालियां देते हैं, ग्लानी करते हैं, समय आएगा जो कल गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे, चिंता नहीं करो, आज समय आ गया। इसलिए बाबा ने कभी भी किसी भी विरोध करने वाले का सामने से विरोध नहीं किया, सबको समाया, सबको निर्दोष ठहराया। ठीक है, कह रहे हैं आज कल महसूस करेंगे, माया के साम्राज्य में है, माया की छाया के अंदर चल रहे हैं, इसलिए सब बातें होती हैं, बच्चे भूल जाओ, याद नहीं करो। तो योगी, जो योगी की जो ऊंची स्टेज है राजयोगी की, आप सब, हम सब योग अभ्यास तो करते हैं, अभी भी हम सब आधा घंटा अच्छी तरह से योग करेंगे, करेंगे ना सब, अभी 7:30 से 8 बजे तक योग चलेगा। अगर अच्छे अनुभव करने हैं तो आप बस उठना बैठना नहीं है, बहुत शक्तिशाली ऐसा योग करो जो एकदम डीप चले जाओ। मैं बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, देखना इंद्रियां एकदम शांत शीतल हो जाएंगी, दृष्टि पवित्र, वृत्तियां एकदम उपराम न्यारी प्यारी, बोल में सरलता मधुरता, कर्मों में वो दिव्यता अलौकिकता, सुख दे रहे हैं सुख ले रहे हैं, संतुष्ट हैं संतुष्ट कर रहे हैं, ये सब योगी जीवन के लक्षण हैं, जो एकदम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ज्योति बिंदु स्वरूप, ज्योति प्रकाश का, लाइट का निशानी, और लाइट के बिना बिंदु भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरा इसका महत्व तो एक ये भी है कि अगर एक के साथ बिंदु लगा दी जाती है तो कितनी कमाई हो जाती है। कि नमाज शाम का समय है और इस समय पर प्रकृति की सेवा करने का बहुत सुंदर चांस है। प्रकृति के पांचों तत्व वर्तमान समय अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। जो प्रकृति हम सबकी सहयोगी रही, प्रकृति के बिना आत्मा ने कुछ भी नहीं काम कर पाया। जब हम अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहकर प्रकृति पति परमात्मा को याद करते हैं तो उनकी दिव्य शक्तियां मुझ आत्मा को भी पावन बनाती और मुझ आत्मा से निकलने वाले पवित्र प्रकंपन इस प्रकृति को भी शक्ति देते हैं। तो चलो सभी अपने अकाल तख्त पर बैठो, भ्रकुटी आसन पर विराजमान। मैं एक चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा हूं। लाइट माइट से संपन्न मैं एक प्रकाश पुंज ज्योतिर्बिंदु सितारा। अपने दिव्य बुद्धि के नेत्र से उस परम ज्योति परम प्रिय परम पवित्र बिंदु स्वरूप बाबा को सामने देखो। और उन्हें अपने मध्य अपने आसन पर आवाहन करो। सर्वशक्तिमान सर्व के कल्याणकारी पतित पावन शिव बाबा मुझ आत्मा के साथ मेरे बहुत समीप कंबाइंड है। उनकी समीपता का उनकी अलौकिक शक्तियों का अनुभव करो। भुजात्मा के चारों ओर एक बहुत सुंदर पवित्र आभा मंडल है। उस प्रकाश के आभा मंडल में मैं चैतन्य ज्योति आत्मा एक लाइट के रास्ते से उड़ते हुए मैं अपने फरिश्तों के लोक में फरिश्तों के मालिक से मिलने के लिए उस लाइट की दुनिया में प्रवेश कर रही हूं। ये अव्यक्त लोक फरिश्तों का लोक है। सभी आत्माएं अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप में विराजमान रहती हैं। प्यारे बाप दादा की नजरों के सामने मैं भी एक लाइट के शरीर में विराजमान हूँ। बाबा का वरदानी हाथ, बाबा की पावन शक्तिशाली दृष्टि मुझ आत्मा को भी संपूर्ण बना रही है। मैं संपूर्ण फरिश्ता विश्व कल्याण की सेवा के लिए बाप दादा की शक्तियों को लेकर इस ग्लोब को शांति और शक्ति की सकार दे रहा हूं। पुकारती हुई भटकती हुई आत्माएं सहारे का अनुभव कर रही हैं। दुखों से मुक्त होती जा रही हैं। शक्ति के पांचों तत्व अपने देव स्वरूप में उपस्थित हैं। उन सब को भी मैं आत्मा अपनी पावन दृष्टि से पावन बनाने की सेवा कर रही हूं। एक एक तत्व का शुक्रिया जिसने आत्मा को इतना समय साथ दिया है। सदा सहयोगी बन कर रही है। इन तत्वों को भी परमात्म शक्ति प्राप्त हो। अपने सत्व प्रधान स्वरूप में आ जाएं। इन्हें भी स्नेह दो, सम्मान दो। शुक्रिया करो। अब लाइट के साइड से भी न्यारे होते होते मैं अपने मूल वतन में, निराकारी दुनिया में, बिंदु रूप बाबा के समीप, बिंदु स्वरूप में स्थित होकर प्यार के शक्तियों के सागर में समा जाए। Thank you. सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियों से संपन्न मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म के लिए इस साकार वतन में साकार तन में अवतरित हुई हूँ। सभी अपने शरीर में भ्रकुटी आसन पर अनुभव करो, अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस पांच तत्वों के शरीर की मालिक चैतन्य शक्ति हूँ।
Thank you.